तो आज हमारे सामने प्रश्न ये है कि संसार दुख रूप क्यों है। संसार की यदि वास्तविकता देखी जाए तो महर्षि रमण की एक बात सोचनी पड़ेगी। एक व्यक्ति महर्षि रमण के पास आया, वो कहता है कि संसार में बड़े दुख हैं, इनसे कैसे मुक्ति मिलेगी। महर्षि रमण कहते हैं, संसार है कहाँ, तेरे मन में ही तो है। अब देखिए कि ऋषि की जो स्थिति है उसके लिए संसार है ही नहीं, इसीलिए उसके लिए दुख भी नहीं है। और यदि महाराज जी की बात करें तो महाराज जी की वाणी भी बड़ा एक स्पष्ट निर्णय दे रही है। कर्तापन से वासना, वासना से संसार, यही अज्ञान है जीव को आवागमन दुख सार। जीव के अंदर जो मूल अज्ञान है, मूल भ्रम है, वो मैं भाव का है, जिसको महाराज जी कर्तापन कह रहे हैं। जब जीव के अंदर कर्तापन है तो कर्म करने की वासना उठती है उसके अंदर, कर्तापन से वासना। जब कर्म करने की इच्छा उसके अंदर उठती है तो कर्म देह से ही तो करेगा, और देह कहाँ कर्म करेगी, संसार में कर्म करेगी। तो इसीलिए इस कर्तापन के कारण वासना उत्पन्न होती है, और इस वासना के कारण ये देह और यह संसार एक साथ प्रकट हो जाते हैं। इसका यदि प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखा जाए ये कैसे प्रकट होते हैं, तब आप अपने अनुभव के बारे में सोचकर देख लो। रात्रि को सोते हो, नींद जब आपकी कच्ची होती है, उस समय देह का अनुभव तो बंद हो जाता है लेकिन मन के संकल्प बंद नहीं होते। इसका मतलब मन के अंदर वासना संकल्प के रूप में प्रकट हो रही है। और जब वासना प्रकट हो रही है तो जैसा वाणी कह रही है, वासना से संसार, तो मन के अंदर वासना के संकल्प जब प्रकट हो रहे हैं तो उस संकल्प के कारण, उस वासना के कारण देह और संसार प्रकट हो जाता है। आपके जो स्वप्न की रचना है उसमें पहले देह प्रकट होती है फिर संसार प्रकट होता है, या दोनों एक साथ प्रकट होते हैं, विचार करके देखो। इसलिए महाजी कह रहे हैं, प्रेमी देह करके संसार है, देह और संसार में कोई भेद नहीं है। ये बात महाजी कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं, देह और संसार में कोई भेद नहीं है। इसीलिए महर्षि रमण कह रहे हैं, संसार कभी आपसे कहता है मैं हूं, तुम ही कहते हो मैं हूं। इसलिए तुम हो तो संसार है, क्योंकि दोनों एक साथ ही प्रकट होते हैं। तो ये अध्यात्म का बड़ा गहरा रहस्य है। जब इस सतमार्ग पर चलते चलते, शास्त्रों का स्वाध्याय करते करते, इसके मन की और बुद्धि की सफाई होती है, उसके बाद ये बारीक सिद्धांत उसकी समझ में आने लगते हैं कि ये सत्य कैसे हैं। अभी व्यक्ति नहीं समझ सकता इन बारीक सिद्धांतों, इनको पढ़ लेता है, सुन लेता है। हम सब जानते हैं और हमारे सबके मन में संकल्प है कि मैं मर जाऊंगा ये सब बच जाएंगे, ये तो है। ये संसार ऐसे ही मैं छोड़ जाऊंगा, और दोबारा मैं इस संसार में फिर पैदा होकर आ जाऊंगा, ऐसे सोचते हैं। लेकिन यदि वाणी ध्यान से पढ़ो तो संसार आपका आपके साथ ही खत्म हो जाता है। सारा संसार आपके मन से प्रकट हुआ है, जिस प्रकार स्वप्न का संसार, स्वप्न की देह मन से ही तो प्रकट हुई है, उसको तो आप एक्सेप्ट कर रहे हो, हाँ मन से प्रकट हुई है। जबकि स्वप्न में सारा व्यवहार करते हुए आप स्वप्न में कभी नहीं सोचते हो ये नकली संसार है, नकली देह है, सोचते हो कभी? इस हालत, जागृत हालत में आने के बाद आप कहते हो वो नकली संसार था, नकली देह थी, मन का संकल्प था। और यदि गुरु की बात करें, वाणी की बात करें, वो क्या कह रही है? हम तो ये कहते हैं ना, वाणी पे तो पूरा विश्वास है हमको, तो ये हम केवल मुंह से कह देते हैं पूरा विश्वास है, और फैक्ट ये हमें दूर दूर तक विश्वास नहीं। महाजी की वाणी साफ कह रही है कि सपना जैसे रात का ऐसे जगदा खेल, तो इसलिए जब आपके अंदर विवेक जागृत होता है, जो विवेक समता विलास मनन करने के बाद आपके अंदर जागृत करती है, तो आपका मोह भंग हो जाता है, यही कह लें कि वीक पड़ जाता है। इतना अटैचमेंट अपनी देह से और संसार से नहीं रहता जितना कि आज है। उस समय फिर ये आपको पता लगता है कि ये कितना बड़ा बंधन जो है वास्तव में मेरे मन की कल्पना, पूरी जिंदगी मेरी नष्ट हो रही है इस कल्पना के अंदर। तो विवेक के प्रकाश में आपके अंदर वैराग्य पैदा होता है, इस संसार से और देह से राग आपका खत्म हो जाता है या वीक पड़ जाता है। उस समय आपके अंदर ईश्वर प्राप्ति की तलब पैदा होती है, अरे ईश्वर आनंद रूप है और वो सत्य है, ये तो सारी सृष्टि एक संकल्प रूप है, ये नाश रूप है, मैं कहां फंसा पड़ा हुआ। लोग जरा सी बात पे आत्महत्या कर लेते हैं, पति पत्नी में तलाक हो जाते हैं, एक दूसरे को कत्ल कर देते हैं, क्योंकि इस देह संसार के बारे में दृढ़ निश्चय है और अपनी इच्छाओं की हम पूजा करते हैं, मेरी इच्छा महान है। यदि मेरे पास ताकत है तो सारे जगत के लोगों की इच्छा खत्म करके मैं अपनी इच्छा पूरी करूंगा, इसी का नाम तो विश्व युद्ध है, और क्या है, वर्ल्ड वार क्या होती है, यही तो होती है, सारी दुनिया को नष्ट करके भी मैं अपनी इच्छा पूरी करूंगा। तो इसीलिए यदि शास्त्र को गहराई से ना पढ़ें आप, तो किस निर्णय पर पहुंचोगे? फिर जैसे आप गानों का मजा लेते हो ऐसे सत्संग का भी मजा लोगे, कहना क्या बढ़िया स्टोरी सुनाई थी, कितना बढ़िया सत्संग किया था, मेरा मन तो पूरी तरह से वहीं लगा रहा, कहीं गया ही नहीं। तो सत्संग को भी एंजॉय करोगे आप। अरे सत्संग के द्वारा तो आपके अंदर विवेक पैदा होना चाहिए था, वो एंजॉयमेंट की चीज थोड़ी ना है, और सुनने के बाद आप सीख जाओगे क्या? पहले यदि आपने शास्त्रों का गहन अध्ययन किया है और फिर भी कहीं कमजोरी आपको ना समझ नहीं आ रही है बात, तब सत्संग आपकी मदद करता है उस बात को समझने में। आप फट से समझ जाते हो, अरे हाँ ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी, आज समझ में आई, ये क्या राज है। वो ज्ञान तो आपकी बुद्धि में टिक जाएगा, क्योंकि वो आपका प्रश्न था, कर नहीं पा रहे थे लेकिन प्रश्न आपका था। वो ज्यादातर लोगों का प्रश्न ही कोई नहीं होता, क्योंकि सोच ही कोई नहीं होती उनकी, बस जीते रहते हैं ऐसे। तो इसीलिए सत्संग सुनने के बाद भी वो ब्लैंक ही रहते हैं, भाई आपकी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो हल क्या होगा उसका, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, जाग रहे हैं, घर का व्यवहार हो रहा है, मन के विरुद्ध काम हो गया रो लिए, मन के अनुकूल काम हो लिया हंस लिए, यही तो जीवन है आपके क्या है। तो इसीलिए ईश्वर की पूजा यदि ना हो तो आपके अंदर अफसोस नहीं होता, तड़प नहीं होती, ये क्या हो गया, नहीं हुआ कोई बात नहीं, संतोष कर लिया कि आज घर में बहुत काम थे नहीं हुआ। तो ये आम व्यक्ति आपको ऐसा ही मिलेगा, सत्संगी भी ऐसे ही मिलेंगे और संसारी भी ऐसे ही। अंतर एक होगा कि सत्संगी कम पाप करेंगे, संसारी ज्यादा पाप करेंगे। तो इसीलिए एक समता विलास अपने आप में एक विलक्षण ग्रंथ है, विलक्षण शास्त्र है। इसलिए विलक्षण है कि नई चीज कोई नहीं लिखी उसमें, ऐसा बात नहीं है कि नई नई चीजें महाराज जी ने लिख रखी है इसलिए विलक्षण है वो, ना, जो चीज गीता में लिखी है उसका डिटेल्ड एनालिसिस महाराज जी ने समता विलास में दिया है, ताकि वो गीता के सूत्र आपको समझ में आ जाए और उस समझ के अनुसार आप अपना जीवन व्यतीत कर सको, ईश्वर के मार्ग पर चल सको। लेकिन हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हम समता विलास को विलक्षण ग्रंथ नहीं समझते, क्योंकि उस तरीके से ना उसको पढ़ने की कोशिश की ना उसको समझने की कोशिश की। इसलिए वाणी का गायन तो आसान है, मन भी लग जाता है इसमें, ईश्वर का भाव भी आता है इसमें, लेकिन मनन कहाँ होता है। वाणी गाने वालों से पूछो, वाणी के किसी दोहे पर भी वो एक चैप्टर लिख सकते हैं क्या? तो चैप्टर कहाँ से निकलेगा, वो मनन से निकलेगा। यदि आश्रम में आपको एक पेपर दे दिया जाए, एक ऐसे लिखने को दे दिया जाए कि सब प्रेमी सत्संग सुनते हैं, राजा दुखिया राणा दुखिया दुखिया कुल संसार ये वाणी भी बोलते हैं, फिर आपसे कहा जाए कि संसार दुख रूप है इस पर एक निबंध लिखो, तो निबंध तो एक मनमाने तरीके से भी लिखा जा सकता है, जो मन चाहा लिख दिया। लेकिन किसी स्टूडेंट से जब बात की जाती है निबंध लिखो, तो उसका एनालिसिस उसने टेक्स्ट बुक के हिसाब से करना होता है, जो वहां लिखा है उस एनालिसिस को उसने अपने वर्ड्स में प्रस्तुत करना होता है। तभी आपका ऐसे ठीक है, उस पर मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे, और पूरी तरह से शास्त्र से यदि आपका विवेचन मैच कर गया तो 100% मार्क्स हैं फिर उसके लिए। तो मैंने जब आपसे पूछा कि संसार दुखरूप क्यों है, तो आपको तो या वाणी से या गीता से या महाजी की समता विलास से वो एनालिसिस प्रस्तुत करना चाहिए था कि सत्पुरुषों ने ये कहा है इसलिए संसार दुख रूप है। ऑथेंटिक जो उत्तर होता है उसका तरीका ये होता है। आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने कैंप किया, तो कैंप का जो कोर्स आपके सामने होता है 5 दिन का, उसमें शास्त्र के आधार पर प्रवचन होता है, लेक्चर होता है, या मनमानी तरीके से होता है? जो भी बात कही जाती है उसका कोटेशन साथ में दिया जाता है या नहीं दिया जाता? वो ऑथेंटिक है, कोई इसको चैलेंज कर ही नहीं सकता, क्योंकि मनुष्य कोई अपने मन की बात ही नहीं कर रहा है। वहां तो सत्पुरुषों का डिसीजन पेश कर रहा है। तो प्रश्न उत्तर का मतलब ये होता है कि जो आपका प्रश्न है उसका उत्तर शास्त्रीय हो, जो उसका उत्तर जो है वो शास्त्रीय का मतलब शास्त्रोक्त हो, तब आपकी बुद्धि स्वीकार करेगी इसको, दूसरे की भी स्वीकार करेगी, अरे भाई ये शास्त्र कह रहा है, ये गीता कह रही है, ये उपनिषद कह रहा है, ये महाराज जी कह रहे हैं, ये गुरु नानक ने कहा है, आप कैसे चैलेंज करोगे इसको? समझने की कोशिश करोगे कि बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। जैसे पिछली बार एक प्रेमी ने प्रश्न कर दिया कि कहते हैं संसार दुख रूप है, लेकिन मुझे यदि जलेबी अच्छी लगती है, जलेबी खाता हूं तो सुख मिलता है, तो मैं कैसे मानूं संसार दुख रूप है? तो बताइए, साधारण रूप में तो आदमी ऐसे ही सोचता है ना, तो कैसे कहोगे आप ये दुख रूप है? सुख दे रही है वो तो, स्पष्ट सुख दे रही है उसको। खैर उसको उत्तर दिया गया, वो पिछला आप जब डिस्कशन सुनोगे तो पता लग जाएगा उसका क्या उत्तर दिया गया था उससे। तो इसीलिए ये इतने हल्के तरीके से ये सत्विचार नहीं सोचे जाते हैं। हम लोग बड़ा हल्का समझते हैं इन चीज़ों को, इसका भी एंजॉयमेंट करते हैं, बस इसमें मन लगाते हैं। ये बुद्धि के विवेचन की चीज़ है। बार बार महाराज जी ने कई जगह समता विलास में कहा, गहरा विचार करने की जरूरत है। और वहां विचार नहीं कहते हैं, वो कहते हैं गहरा सत विचार करने की जरूरत है। और सत विचार किसे कहते हैं? जो सत पुरुष के मुंह से निकला हो या उसकी कलम से लिखा गया हो, वो है सत विचार, और कोई सत विचार नहीं होता। हम दुनिया की मैगजीन पढ़ते रहते हैं सत विचार के नाम से, यानी क्या क्या पढ़ते रहते हैं, हम सोचते हैं सत विचार कर रहे हैं, हमें सत विचार की परिभाषा भी नहीं मालूम। मैं भी आपके सामने कर रहा हूं, मैं सत विचार नहीं कर रहा हूं, सत विचारों को समझने में आपकी सहायता कर रहा हूं। सत विचार तो महाराज जी कर सकते हैं, जो विचार सत के द्वारा प्रकट हुआ हो, जो विचार ईश्वर के द्वारा प्रकट हुआ हो, जो विचार सतपुरुष के द्वारा प्रकट हुआ हो, वो सत विचार है। तो हम क्या विचार करेंगे जब सत विचार हमारे सामने खुला ही नहीं होता है? खुला हो तो विचार करेंगे ना उसके ऊपर। तो इसीलिए हमारी बुद्धि भी वैसी बनी हुई है। ईश्वर की प्राप्ति की कोशिश भी कर रहे हैं और महाराज जी का निर्णय स्वीकार भी कर रहे हैं कि संसार दुख रूप है, यहां तूने क्या लेना है? तो संसार दुख रूप है तो सीधी सी बात हो गई, जो कुछ भी तो संसार में पुरुषार्थ कर रहा है सब निरर्थक है। क्योंकि दुख रूप संसार में तू पुरुषार्थ क्या दुख प्राप्ति के लिए कर रहा है? आपकी बुद्धि तो कभी नहीं कहती मैं दुख प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ कर रहा हूं, सब ये कहते मैं सुख प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ कर रहा हूं। लेकिन सत्पुरुष का निर्णय है संसार जब दुख रूप है तो तेरा पुरुषार्थ तो दुख में ही हुआ ना। तो इसलिए वेद व्यास ने परिभाषा करी पुरुषार्थ की, क्या परिभाषा की उन्होंने? जो प्रयत्न ईश्वर प्राप्ति के लिए किया जाता है उसको पुरुष प्रयत्न अर्थात पुरुषार्थ कहते हैं। और यही बात महाराज जी करें, प्रभु के सिमरन कारणे यह दुर्लभ जीवन पाए, मानुष जन्म सफल होवे जब प्रभु दाता चित आए, प्रभु के सिमरन कारणे यह दुर्लभ जीवन पाए। दुर्लभ जन्म है, हमें तो ये पता नहीं है दुर्लभ है, तो बताइए हमको अपने जीवन के बारे में होश नहीं है तो फिर क्या सफलता मिलने वाली है हमको? हम तो सफलता दुख को बढ़ाकर इस वहम में फंसे रहते हैं कि मैंने बड़ा सफल जीवन व्यतीत किया है। जो व्यक्ति 10 अरब की या 10 करोड़ की संपत्ति छोड़ के जा रहा है वो तो यही सोचता है मैंने बड़ा सफल जीवन व्यतीत किया, देखो कितनी संपत्ति मैंने अर्जित करी। उसका ये होश ही नहीं है, मनुष्य जन्म का तो नहीं ये पाप किया है, संपत्ति को इकट्ठा करना ये मनुष्य जन्म का पाप है। क्योंकि संपत्ति जिसने इकट्ठी की है उसने वक्त की बर्बादी की, आसक्ति बढ़ाई है, संसार का निश्चय पक्का किया है। कहाँ सत्संग किया फिर उसने, कौन सा सत्संग उसने समझा है? जब जिंदगी की समझ ही नहीं बदली तो कौन सा सत्संग समझा तुमने? तो इसीलिए ये बातें हमको हजम ही नहीं होती हैं। फैक्ट ये है, ये बातें हजम ही नहीं कर पाते हम लोग। ये ठीक है कि नॉर्मल हालत में ये सारी बातें मनुष्य सुन लेता है, वो ये भी नहीं कहता कि गलत है, लेकिन इनको समझ भी नहीं पाता। तो इसीलिए महाजी कहते हैं, दुखा महाजी क्या कह रहे हैं, महाजी कह रहे हैं प्रेमी ये 5 नियम जो तुमको बताए गए हैं, सादगी, सत्य, सेवा, सत्संग और सत्सिमरण, जब तुमने गुरु धारण किया है, गुरु पर श्रद्धा लाई है अपनी, तो इन 5 नियमों के अनुसार अपने जीवन का प्रोग्राम बनाओ। प्रोग्राम के लिए क्या कह रहे हैं वो, समय सीमा बांधकर इस आध्यात्मिक प्रोग्राम में जिसको परमार्थ कहते हैं, और जो स्वार्थ कर्म है आपके, जो स्वार्थ का जीवन है जिसको इच्छाओं का जीवन कहते हैं, जिंदगी की आवश्यकताएं पूरी करने वाला जीवन कहते हैं, निश्चित समय उसके लिए दो, निश्चित समय इसके लिए दो। हम क्या करते हैं, सारे नियम एक ताक पर रख के संसार का लॉस नहीं होना चाहिए, सारा पुरुषार्थ उसमें हमारा, सारी सिंसेरिटी उसमें रहती है। अध्यात्म का प्रोग्राम कोई बात नहीं, छोटा हो गया तो कोई बात नहीं। कहते हैं केवल आधा घंटा मिल पाता है मुझको सिमरन के लिए, आधा घंटा मैं जरूर कर लेता हूँ। तो ईश्वर का तो हम काम चलाते हैं और संसार का काम हम गंभीरता से करते हैं, तो हम यहीं तो खड़े हुए ना। क्योंकि निश्चय संसार का है, निश्चय ये है हमारी, संसार सुखरूप है, जितना पुरुषार्थ कर लूँगा उतने सुख इकट्ठे कर लूँगा। इस निश्चय को मन में जगह देकर हम जीवन जीते, और ये केवल बात है कि संसार दुख रूप, इसका निश्चय बुद्धि में नहीं। तो इसीलिए जब तक आप उस पर गहरा मनन नहीं करोगे आप इस निर्णय पर नहीं पहुंचोगे, और जब तक इस निर्णय पर नहीं पहुंचोगे ईश्वर के मार्ग में चलने में आपके अंदर गंभीरता आ ही नहीं सकती। अभी 2 चैप्टर तो बिल्कुल क्लियर है ना, बाकी जगह बहुत जगह लिखा है महाराज जी ने, 20 जगह लिखा है इस बात को, लेकिन 2 चैप्टर तो पूरे के पूरे लिखे इन्होंने। वासना विवेक जिसके 4 अंग हैं, योग मार्ग बोध जिसके 4 अंग हैं, इतना बड़ा चैप्टर है, इसको गहराई से पढ़कर तो देखो, बार बार पढ़ो, ये मत सोचो कि मैंने 5 बार पढ़ चुका हूँ इसको। वो जैसे बुक रीडिंग की जाती है ऐसी रीडिंग के लिए नहीं होती है, हर वचन पर गहरा विचार करना पड़ता है। यदि विचार करने की सामर्थ्य नहीं है तो जिसके अंदर विचार करने की सामर्थ्य है उससे पूछना पड़ता है। इस स्पिरिट के साथ में ये क्वेश्चन ऐसा इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में ज़रूर आएगा, और यदि मैंने नहीं सीखा तो मैं फेल हो सकता हूँ। उस स्पिरिट के साथ में, उस भावना के साथ में जब आदमी इसको जानने की कोशिश करता है तब देखो आपके सत्संग आपके दिमाग में कैसे टिकेगा, फिर सारे प्रवचन आप कैसे तलाश करोगे, कैसे सुनोगे, आपको सुनने का तरीका ही बदल जाएगा। तो आपकी वेबसाइट पे, आपके पेन ड्राइव में ये सारा विज्ञानी थे और क्या, इसके अलावा कुछ हो तो बता देना। लेकिन उस तरह की गंभीरता है हमारे अंदर सुनने के प्रति उन चीज़ों का। ये सारे के सारे जितने भी विचार हैं ये समता व्लास का एक्सप्लेनेशन ही था और क्या है, गीता का एक्सप्लेनेशन ही था और क्या है। लेकिन वो गंभीरता हमारे अंदर कहाँ है सीखने की, दूर दूर तक नजर नहीं आती कहीं पर। तो इसीलिए जब तक आप उसको सुनकर सीखने की कोशिश नहीं करोगे, और केवल सत्संग से नहीं सीख सकते, फिर बता रहा हूं आपको, उसका आधार शास्त्र है, वो आपकी टेक्स्ट बुक है, बाकी ये समझ लो कुंजी पढ़ रहे हो आप, की नोट्स पढ़ रहे हो आप। तो शास्त्र को जब पढ़ते हो उसके साथ जब सत्संग सुनते हो, फिर आप देखते हो कि इस शास्त्र का एक्सप्लेनेशन किस प्रकार से सत्संग में दिया गया है। वो सरल एक्सप्लेनेशन होता है जो आपकी बुद्धि तुरंत पकड़ लेती है, तब आप सही रूप में सत्संग के प्रति गंभीर होते हो, तब वो सत्संग आपको फायदा देता है। जब गंभीरता से सोचोगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अमल ना करो, क्योंकि ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो अपना बुरा करने के लिए संसार में कर्म करता है। वो भ्रम में कर्म करता रहता है जिससे उसका बुरा हो जाता है। हर व्यक्ति अपने फायदे के लिए कर्म करता है। तो इसीलिए कहा जाता है मां जी, लोगों के अंदर भ्रम बैठा हुआ है, लोग भ्रमित हैं। तो संसार दुख रूप क्यों है, इसका यदि सिंपल सा एनालिसिस जो हम थोड़े समय में विचार कर सकते हैं, तो वो कहते हैं सारी की सारी प्रकृति में मेरा शरीर भी आ गया, जो कुछ भी मैं अनुभव करता हूं देखता हूं सारा आ गया, पूरी की पूरी प्रकृति तीन गुणों से युक्त है। और तीन गुण होते हैं सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, बार बार हम सुनते हैं। और ये तीन गुणों के अनुसार हर चीज निरंतर बदलती रहती है, जैसे हमारा स्वभाव निरंतर बदलता रहता है, सब जानते ना। कभी आप देखते होगे सिमरन में बड़ा अच्छा मन लग जाएगा, कभी मन कम लगेगा, कभी इतना बेचैन हो जाएगा कि 5 मिनट भी सिमरन करना मुश्किल हो जाता है, मन करता है भाग जाओ यहां से। ये क्या हो रहा है, आप तो वही हो लेकिन आपका अनुभव कहता है हाँ ये तीनों बातें होती हैं। तो ये क्या है, जिस समय आपके मन के अंदर रजोगुण प्रधान है मन की चंचलता कायम है वहां पर, जिस समय तमोगुण प्रधान है उसमें सारा विवेक भूल जाओगे, सारा वैराग्य गायब हो जाएगा, सारी सोच गायब हो जाएगी, कहते हो मैं परेशान हो जाता हूँ पता नहीं क्या हो गया। और जिस समय सतोगुण की धारा अंदर मन में बह रही है तो बड़ा आनंद आएगा सिमरन में, आपको कहेगा आज तो जो है ऐसा लगता है कि मैं बदल गया, तो अब तो हमेशा ही सिमरन में ऐसे आनंद आया करेगा। लेकिन आपको होश ही नहीं है, ये तीनों धाराएं तो हमेशा चलती है और ये स्थिति आपकी रहेगी। कब तक रहेगी, जब तक आपका स्वभाव सतोगुण प्रधान नहीं हो जाता, आपके स्वभाव में सतोगुण की प्रधानता नहीं हो जाती। वो प्रधानता कैसी होती है वो समता विलास पढ़ के देख लो, सतोगुण में प्रधान जीवन क्या होता है। और यदि उसका रिजल्ट देखना चाहते हो कैसा होता है, तो मैंने कल ही बताया था कि बुद्धि की 7 अवस्थाएं जो समता विलास में लिखी हैं उसमें 4 अंधकार की हैं और 3 प्रकाश की हैं। और हर व्यक्ति ये समझता है कि मेरी बुद्धि तो प्रकाशित है, बड़ा समझदार आदमी है। तो बुद्धि की पहली प्रकाशीय अवस्था पढ़ लो समता विलास में क्या लिखी है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, उसका जीवन कैसा होता है, आंतरिक जीवन कैसा होता है। तो बुद्धि की पहली प्रकाशीय अवस्था आप संतरा से पढ़ सकते हो, पहले आपको निर्णय हो जाएगा मैं सतोगुणी नहीं बन पाया, रजोगुणी तमोगुणी हूँ। फिर आपको अंदर से शर्म आएगी, क्या मैं आध्यात्मिक चर्चा करता रहता हूँ, हूँ तो मैं ऐसा सबको सुनाता रहता हूँ, खुद ऐसा हूँ, खुद ही शर्म आएगी आपको अपने ऊपर। भाई कहीं तो आईने आईने में अपनी शक्ल देखोगे मैं कैसा हूँ तो आईना समता विलास ही आपके लिए। मनमाने तरीके से अपने को हम डिग्री ना दे ले, मैं ऐसा हूँ मैं ऐसा हूँ। तो जब तीन गुणों से युक्त तो पूरी प्रकृति है और ये गुण निरंतर आपस में बदलते रहते हैं, तो अब बताइए जहां निरंतर परिवर्तन हो वहां चैन कैसे हो सकता है। स्थायी स्थिति जहां होती है वहां चैन होता है, जब निरंतर परिवर्तन होता है वहां चैन नहीं होता। और इतना ही नहीं, अब यदि रचना की बात करो, ये तो प्रकृति का मूल स्वरूप है, अब यदि रचना की बात करो, जैसे रचना मेरी देह की रचना मुझे दिखाई पड़ रही है, क्योंकि गुण तो सूक्ष्म चीज होगी, जैसे मन आपका सूक्ष्म है, मन स्थूल तो नहीं है, निकाल के कोई दिखा सकता है ये मन है, लेकिन गुण मन के अंदर है, तीनों गुणों का प्रभाव मन के अंदर है, वो सूक्ष्म चीज है। ऐसी प्रकृति में भी तीन गुण है, ये सूक्ष्म चीज, जैसे देह के मुकाबले में मन सूक्ष्म है, ऐसे ही प्रकृति के मुकाबले में गुण सूक्ष्म है स्थूल प्रकृति के मुकाबले में। और यदि स्थूलता की बात करें तो हम सब जानते हैं कि देह पांच तत्व की बनी है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। और क्योंकि देह संसार एक साथ प्रकट होते हैं इसलिए प्रकृति भी जो बाहर की है वो भी पांच तत्वों से बनी है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। और इन पांच तत्वों के पांच गुण हैं जिसको महाजी पांच विकार कह रहे हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। आकाश का गुण क्या है? अहंकार। आकाश से सूक्ष्म क्या है? वायु। वायु का गुण है लोभ, उससे स्थूल चीज क्या है? अग्नि है। अग्नि का गुण क्या है? क्रोध, उससे स्थूल क्या चीज है? जल। जल का गुण है काम, उससे स्थूल क्या है? ठोस पृथ्वी, इसका गुण है मोह। तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये पांच तत्वों के पांच गुण होंगे। तो ये पांच विकार हैं और इन पांच विकारों का निर्णय वाणी कर रही है कि पांच विकार महादुखदाई जले सकल संसारा, सारा संसार जल रहा है। ये शेर हत्या करता है किस लिए करता है? इन्हीं पांच अब गुणों के अंदर प्रभावित होकर। हम एक दूसरे से लड़ते हैं किस लिए लड़ते हैं? इन पांच अब गुणों से प्रभावित होकर। जरों से दस गुना ज्यादा इकट्ठा करके भी हम असंतुष्ट रहते हैं, अभी संपत्ति कम है, किस लिए? लोभ विकार के कारण। समाज में इतने पाप होते हैं किस लिए होते हैं? काम विकार के कारण। तो हर तो विकार आपका जो है वो सारे समाज को बर्बाद कर रहा है, आपको बर्बाद कर रहा है। सारी जेलें इन्हीं पांच विकार के कारण भरी पड़ी हैं और हम कमा कमा के इन पांच विकारों को बढ़ा रहे हैं, बड़े खुश हो रहे हैं कि मेरा जीवन सफल हो रहा है। जिस कर्म के द्वारा अपनी जिंदगी अपने हाथ से बर्बाद कर रहे हैं अज्ञानता के कारण, उसको सफल जीवन समझ रहे हैं। तो बताइए आपकी जिंदगी कहाँ जाएगी? वाणी जो कह रही है, हमने कभी बैठ के विचार किया है इस बात का? पांच विकार महादुखदाई जले सकल संसारा, ये तो मैं अनसिकल देखो ये जल रहा है वो जल रहा है, अपने भाई अपनी तरफ उंगली कभी नहीं आती मेरी, कि अपने बारे में कभी सोचा मैंने गहराई से, मैं कहाँ कहाँ जल रहा हूँ। यदि अपनी जलन मुझे पता लग गई होती ना, तो फिर मैं गुरु की तरफ देखता कि इस अग्नि को गुरु तू ही शांत कर सकता है। तब पता रहता कि हाँ मैंने गुरु बनाया है, किस लिए किस वास्ते बनाया है। तब समझ में आती महाजी ये बात क्यों लिख रहे हैं कि समय सीमा बांधकर स्वार्थ और परमार्थ का प्रोग्राम बनाओ और उस पर दृढ़ निश्चय के साथ चलो। जरा कमाई कम हुई ऐसा लगता है जिंदगी मेरी फेल हो रही है, सारी गृहस्थ जीवन सब बर्बाद हो जाएगा, ये बेचैनी मेरी तुरंत हो जाती है। और उधर सिमरन कम हो गया, कोई बेचैनी नहीं, कोई बेचैनी होती है। फिर भी बुद्धिमान कहता रहता हूं अपने आपको, मैं बड़ा समझदार आदमी। तो समझौते मैं ईश्वर के मार्ग में चलने में ही करता हूं, मैं संसार में समझौते नहीं करता, वहां तो मैक्सिमम कैपेसिटी यूज करता हूं। तो कहां होशियार आदमी हूं मैं, कहां होशियार मेरी बुद्धि में, कहां मेरा निश्चय हुआ कि संसार दुख रोग है। ये तो केवल बातें हैं जो कर लेता हूं सुन लेता हूं, निश्चय तो नहीं। तो यदि शास्त्र का एनालिसिस आपने बार बार पढ़ा होता और गहरा उस पर मनन किया होता, तो ऐसा हो ही नहीं सकता था कि आपका भी निश्चय यही होता कि ये संसार दुख रूप है और ये मनुष्य का जितना जीवन है ये पांच विकारों से युक्त है। तो इसमें जलन के अलावा अन्य कोई चीज मन के अंदर इकट्ठी होने वाली नहीं है। तेरे मन में सारी इच्छाएं ऐसी ऐसी पैदा हो जाएंगी जो तेरे अंदर जलन ही पैदा करेंगी, जिंदगी का फेल्योर ही पैदा करेंगी और कुछ मिलने वाला नहीं। चैन नाम की वस्तु विकारों में कैसे हो सकती, जरा विचार करके नहीं देखा आपने कभी? इस संसार में चैन चाहते हो ना आप, और तेरी देह और तेरा संसार ये पांच विकार से युक्त है, इसके अलावा है ही कुछ नहीं इसके अंदर। जैसे गिलास के अंदर पानी में नमक घुला हो तो कहीं से भी पियोगे तो नमकीन होगा ना वो, या मीठा भी कहीं से होने की संभावना है। तो ठीक उसी प्रकार इस जीवन कैसा भी आप संसार में जी लो, वो बेचैनी ही देगा आप, क्योंकि हर व्यवहार आपका पांच विकार के अंतर्गत ही होना है। तो इसीलिए जब आप सत विचार के अनुसार, या यूं कहें गुरु आज्ञा के अनुसार, जब आप कर्म करने की कोशिश करते हो, पैसा कमाते हो तो वो कहता है कि ईमानदारी से कमाओ गुरु कहता है, और मर्यादा में कमाओ, दो वर्ड यूज कर रहा था। मर्यादा की बात क्यों कर रहा है, क्योंकि मर्यादा आप तोड़ोगे तो ईश्वर को भूलोगे और क्या करोगे आप, मर्यादा टूटते ही संसार की याद बढ़ जाएगी, ईश्वर की कम हो जाएगी और क्या होना, यही चेंज होना आपका जीवन। तो इनकम आपकी बढ़ रही है, कारोबार का बढ़ रहा है, तो आपका जीवन फेल हो रहा है, कोई कहाँ खुश होता है इस बात का, बड़े खुश होते हो मेरा कारोबार बढ़ रहा है, कहाँ इस बात का होश है, सारी मर्यादाओं का उल्लंघन हो रहा है, गुरु की बात का उल्लंघन हो रहा है। वो कह रहा है समय सीमा बांध के मेरी सारी सीमाएं टूट रही हैं, कहाँ होश है इस बात। तो इसीलिए ये सारी की सारी प्रकृति जिसमें मेरा शरीर मेरा मन भी शामिल है, ये तीन गुण और पांच विकार के द्वारा प्रेरित है और ये कायमे से पैदा हुए हैं, कर्तापन से पैदा हुए हैं, इसका मूल कर्तापन, और ईश्वर कर्तापन रहित है इसलिए उसको जीवन कहते हैं। कर्तापन में मौत है, देखो कर्तापन में मौत है और कर्तापन रहित अवस्था में जीवन है। मेरी देह विकार युक्त है लेकिन फिर भी ईश्वर इसमें मौजूद है, वो आनंद रूप है, वो शांति रूप है। तो मनुष्य जब शास्त्रों के स्वाध्याय के द्वारा, उनका एनालिसिस उनका विश्लेषण श्रवण के द्वारा, जिसको हम सत्संग कहते हैं, जब खुद इस निर्णय पर पहुंचता है जो निर्णय शास्त्र में किया हुआ है, जिसको नानक भी कह रहे हैं नानक दुखिया कुल संसार, जिसको उपनिषद भी कह रहा है दुखम सर्वम अनुस्मृत, मत भूलो कि सब कुछ दुख ही है, तो जीने का रास्ता बता दिखा रहा है उपनिषद कैसे जीना है। काम भोगान निवर्तयेत, तू कामनाओं और भोगों से निवृत्ति प्राप्त कर, यह है जीने का रास्ता। और मैं मनुष्य जन्म लेकर कामनाएं भोगों को बढ़ाने के रास्ते पर चल पड़ता हूं और पूरी दुनिया की नकल करता हूं, भूल जाता हूं गुरु ने कैसा जीवन व्यतीत किया था, गुरु को जो असली भक्त थे उन्होंने कैसा जीवन व्यतीत किया था, सब भूल जाता हूं। उनको तो कहानी किससे सुनता रहता हूं, सुनाता रहता हूं, यही तो करता हूं। फिर कहता है मैं बड़ा बहुत बड़ा सत्संगी हूं, जीवन का होश ही नहीं। तो ये सोचो, बार बार सोचो, ये वाणी ऐसी गाने के लिए है कि पांच विकार महादुखदायी जले सकल संसार संसारा। सोचो तो सही भैया, कि मैं भी जल रहा हूं नहीं जल रहा हूं इन पांच विकारों में। तो ऐसे ही बैठ के सोचने लगोगे तो नहीं विचार आएगा आपके अंदर, ये कहो मैं क्या सोचूं कैसे सोचूं। शास्त्र सामने खुला हो, उसमें डिटेल एनालिसिस लिखा हुआ है, उस पर बुद्धि लगाओ, उसको समझने की कोशिश करो। 50 बार भी फेल हो जाओ कोई बात नहीं है, आपकी सफलता यह है कि 50 बार आपने कोशिश की इसको समझने की, यही आपकी सफलता है। फिर आपके अंदर तड़प पैदा होगी कि अपनी सारी बुद्धि लगाते हुए मुझे 3 साल तो हो गए बात समझ नहीं आती, तब किसी के पास जाओगे ना जो इस चीज़ को जानता है समझता है, तब आपको दिल में ठंडक मिलेगी। उसके एक बार के बताने से ही आप समझ जाओगे, और ऐसा समझ जाओगे जिंदगी में नहीं भूलोगे फिर आप, क्योंकि आपको उस चीज़ की नीड है। अब आप सुन नहीं रहे हो, आपको उसकी ज़रूरत है। अपनी समस्या हल कैसे होगी इसका सलूशन वो बता रहा है आपको, उसको नहीं भूलोगे। तब आप अपने प्रति गंभीर होते हो, फिर आपको समझ आ जाती है कि वास्तव में संसार दुखरूप है, इसमें मैंने वक्त बर्बाद नहीं करना, और समय सीमा बांधकर मैंने अपना कारोबार करना है, सर्विस करनी है, समय सीमा बांधकर मैंने सिमरन करना है, सत्संग करना है, सेवा करनी है, सारा प्रोग्राम आप जो है वो मर्यादा में रह के बनाते हो, अमल करते हो उस पर। महाजी कहते हैं कि जब तूने गुरु आज्ञा के अनुसार जीवन बनाया है तो सुख आए या दुख आए गुरु के हुक्म में देख, तूने उसको उसके हुक्म में सहन करना है। और इस बात का ध्यान रखना है तेरे जीवन में सुख और दुख तेरे प्रारब्ध के अनुसार आते हैं, वो प्रारब्ध ही गुरु का हुक्म है, इसलिए तूने उसको सहन करना है। हिम्मत नहीं तोड़नी है लोगों की निकल करके, हाय मैं भी इनकी तरह चलता झूठ बोलता तो मेरा भी कारोबार सफल हो जाता, मैं भी आगे बढ़ जाता, तू बर्बादी के मार्ग पर आगे बढ़ जाता, ये होता तेरा। अब तू मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है, संसार के थोड़े कष्ट सहन करके तू मुक्ति के मार्ग पर, जो सबसे कीमती वस्तु है संसार में, उस मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। तुझे गेन का पता ही नहीं अपने, मैंने कितनी बड़ी चीज प्राप्त की है, संसार का लॉस तुझे नजर आ रहा है, तुझको पता नहीं है ईश्वर मार्ग में चलने वाले लोग तप किया करते हैं, और संसारी मनुष्य का यही तप होता है कि जब कमी आती है पारिवारिक की कमाई में तो उसको वो ईश्वर हुक्म में सहन करता है। जान के गलती तो नहीं कर रहा, वो सोच समझ के चल रहा है, गुरु आज्ञा पालन करके चल रहा है, फिर भी कमी आ रही है तो उसको सहन करता है, उसमें गुजारा करने की कोशिश करता है, यही उसका तप है। ये तप ही अंतर्यामी ईश्वर के प्रति प्रेम पैदा करता है, हर वक्त की उसको याद दिलाता है, ईश्वर की याद के बिना उसका 1 घंटा भी नहीं कटता कभी। तब धीरे धीरे इस दुख रूपी संसार से मुक्त होकर वो अंतर्यामी जो ईश्वर बैठा है, जो सुख रूप है, जिसको सुख ना कहें तो उसको हम क्या कहते हैं, महाराज कहते हैं उसको परम सुख रूप। परम सुख उसे कहते हैं जो दुख में कभी बदलता ही नहीं, जिसको हम सुख कहते हैं वो तो हर सुख दुख में बदल जाता है, साफ साफ लिखा है हर सुख दुख में बदल जाता है। इसलिए वाणी कह रही है जो सुख स्थिर ना रहे वो तो दुख का रूप, ऐसे घने कलेश से कैसे पावे छूट। इसको घना कलेश कह रही है वाणी, जिसको हम सुख कह रहे हैं, कहां बेहोश बुद्धि लेके हम बैठे हुए, यही मदहोश बुद्धि महाराज जी कहा करते थे। ये संसार का नशा चढ़ा हुआ है, संसार का मद चढ़ा हुआ है। तो गुरु ज्ञान का जब नशा चढ़ता है ना उसको, तो ये विवेक बुद्धि कहलाती है, ये सब चीजें उसको नजर आती है। तो इसीलिए जो निर्णय समता विलास में किया हुआ है, संसार दुख रूप है, इसको सीखें क्यों दुख रूप है, कैसे दुख रूप है। और संसारी तरीके से जो हम जीते हैं वो हमारा जीवन पांच विकारों से युक्त है, और जो पांच विकार से युक्त जीवन होता है उसको पाप रूप जीवन कहते हैं। तो जिस जीवन को जीकर मैं अहंकार करता हूं, मैं बड़ा आदमी हूं, दूसरों से अच्छा आदमी हूं, शर्म आनी चाहिए जब उसको ज्ञान होगा ये तो मेरा पाप रूप जीवन है, इसका अफसोस करूं या इसका अहंकार करूं, तब आंख खुलती है, तब उसके अंदर निर्माणता आती है। तो इसीलिए बिना शास्त्र के पढ़े हुए, खुद उसका मनन किए हुए, आपको सत्संग भी सही समझ में नहीं आएगा, और कहीं आ भी गया तो बुद्धि में टिकेगा नहीं। तो इस प्रक्रिया से, इस मनन प्रक्रिया से यदि जिंदगी में सही चलना है, ईश्वर मार्ग पर चलना है, तो इस मनन प्रक्रिया से आपको गुजरना ही पड़ेगा, तभी ये निर्णय समझ में आएंगे कि संसार कैसे दुख रूप है और इस दुख से मैं कैसे बच सकता हूँ। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वम्।